فأتبعهم فرعون بجنوده. तो पीछा किया, वो भी इतना ढीठ था, उसने भी ये नहीं सोचा कि जो है इनके लिए आगे समंदर फट गया, उसके अंदर रास्ते बन गए। कहते हैं कि 12 रास्ते बन गए, 12 रास्ते बनकर ना सिर्फ वो रास्ते बने क्योंकि इनके 12 कबीले थे, बल्कि वो जो जमीन थी समंदर, बेड ऑफ द सी, तो देखिए आप सो कितना वो गीला होगा, उसके अंदर तो पैर ही नहीं रखा जा सकता, वो भी यबसन सूखा खुश्क के आराम से चल सके। तो वो निकल गए, ये खड़ा देखता रहा, इसने कहा इनका तो पीछा करो। पहले तो हक्का बक्का रह गए क्योंकि इसके तो साथी भी, इसका लश्कर भी कहीं अब इम्प्रेस ना हो जाए, वो भी तो अपने सामने कितनी बड़ी चीज देख रहे हैं। लेकिन फिरौन की जो हठधर्मी थी ना, इतनी बड़ी चीज सामने देख के भी, जिसको देख के इंसान की आंखें खुल जानी चाहिए, ये बड़ा मोजा था, मगर इसकी ईगो, उसको कहां उसने चैन से बैठने देना था कि मैं हार मान जाऊं, उसकी तो इज्जत का सवाल हो गया ना, मैं पीछे हट जाऊं, उसने तो हार मानना सीखा ही नहीं था, पीछे हटना सीखा ही नहीं था, वो पूरे लश्कर को लेके चल पड़ा। और फिर क्या हुआ, वगाशिया हम मिनल यमी मा गाशिया हम, तो ढांप लिया उनको समंदर ने, जिस चीज ने ढांप लिया उनको, तो दो दफा आया है वगाशिया हम, यानी पूरी तरह उनको ढांक लिया, समझने के ऐसे कि उनको कवर कर दिया, वो कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे, ऐसे वो डूबे अंदर, समंदर उनके ऊपर चढ़ दौड़ा। आपने सोची एक बात, वही रास्ता किसी के लिए निजात बन गया और वही रास्ता किसी के लिए अजाब बन गया। उसी रास्ते ने किसी को बचा लिया और किसी को डबो दिया, फर्क क्या था? क्या फर्क था बताएं? मतलब तासीर चीजों में नहीं होती, तासीर तो रब के हुक्म में होती है, वो चाहे तो उसी चीज को किसी के लिए जहर बना दे, अजाब बना दे, वो चाहे तो उसी चीज को किसी के लिए तरियाक बना दे, रहमत बना दे, चाहे तो उसी औलाद को किसी के लिए आंसू बहाने का जरिया बना दे और उसी औलाद को किसी के लिए रहमत बना दे, चाहे तो दौलत को किसी के लिए दर्जात की बुलंदी का बायस बना दे, चाहे तो उसी दौलत को किसी के लिए रातों की नींद उड़ा देने का जरिया बना दे। चीज वही होती है, ये अल्लाह ही है, किसी चीज में बरकत डाल दे, किसी चीज से बरकत निकाल ले, किसी चीज को रहमत बना दे, किसी को अजाब बना दे। एक ही सांप था, कभी वो आसा बन गया, कभी वो जहरीला सांप बन गया, एक ही चीज है ना, इतना काम देने वाला बन गया कि उससे इतने काम हो रहे हैं, पत्ते झाड़ रहे हैं, कभी वो इतना बड़ा सांप बन के रह गया। तो चीजें हमारे से नहीं होती, वो अल्लाह ने किसी चीज को खैर बना देना या किसी चीज के अंदर शर डाल दे तो वो जो खैर नजर आती है वो भी शर बन जाती है। उसको तो खैर का रास्ता नजर आ रहा था ना, ये सूखा रास्ता, जैसे वो चलेगा मैं भी चला जाऊंगा, वो पार हो गए मैं भी पार लग जाऊंगा, उसको थोड़ी पता था कि डूब जाना, लेकिन उसके लिए वो डूब डबोने का जरिया बन गया। तो बड़ाई चीजों में नहीं होती, चीजें बड़ी नहीं होती, चीजों के अंदर कोई ताकत नहीं होती, चीज कोई बचाती नहीं है, ये अल्लाह ही है। पूरा समंदर उनके लिए फट के इतने बड़े बड़े पहाड़ों की तरह लहरें खत्म खड़ी हो गई और वो लोग समंदर से चले गए, और वो ही समंदर जब ये पहुंचे तो वो मिल गया और ये सब के सब गर्क हो गए। कितना बड़ा सबक है कि जो गलत चॉइसेस करते हैं, किसी गलत बंदे के पीछे लग जाते हैं, जो शैतान के फॉलोअर बन जाते, तो वो फिर कहाँ पहुंचेंगे, वहीं पहुंचेंगे जाना वहां जहां वो पहुंचेगा। इसीलिए तो कहा गया वो अदल फिरौन, गुमराह हो गया, भटक भटका दिया फिरौन ने कौम, अपनी कौम को खुद भी भटका और उसे भटका दिया। अदल लाजिम नहीं है, मुतादी है, वो भटका दिया उसने अपनी कौम को, व माहदा, और नहीं उसने उनको सीधा रास्ता दिखाया। अल्लाह अकबर, वो पता है कौम को यही यकीन दिलाता रहा कि मैं जो कर रहा हूं ना ठीक है, मैं तुम्हें सीधे रास्ते पे लेके जा रहा हूँ। जाहिर है आप मुझे बताएं कौन, कोई दुनिया में ऐसा लीडर होगा? हिटलर को भी उठा के देख ले, वो भी कहता था मैं बिल्कुल सही हूँ अपनी कौम को, उसने यही कहा था। बहुत लोग थे ना उसके पीछे, उसकी कौम तो उसके साथ ही खड़ी हुई थी। तो वो तो यही कहते हैं कि हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, हम तुम्हें सीधे रास्ते पर लेकर जा रहे हैं, ये कर रहे हैं। और लोग कल अनाम भेड़ बकरियों की तरह पीछे चल पड़ते, अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करते। और जो आगे जाने वाला होता है, जो रहनुमा बनता है, वो ही उनको हलाकत के गड़े में ला देता है। तो अपनी आंखें खोल के चलने की जरूरत है ना, क्योंकि वो तो कहता है मेरे ऊपर यकीन रखो, ये फिरौनी तरीका यही है। सिवाय अल्लाह के रसूल के कोई ऐसा नहीं है जिसकी बात को आप ब्लाइंडली फॉलो कर लें। जैसे इमाम मालिक फरमाते थे ना, सिवाय इस कबर वाले के किसी की भी बात रद्द की जा सकती है। इतने बड़े इमाम थे, तो वो बैठे होते थे मस्जिद नबी में, दर्स देते थे ना, तो इशारा करके फरमाते थे सिवाय इस कबर वाले के किसी की भी बात रद्द की जा सकती, कोई खुदा नहीं, कोई रसूल नहीं। हम खुदा बना लेते हैं लोगों को, हम समझ लेते हैं कि बस जो इन्होंने बात कह दी वो ही सही है, और अंधाधुंध उसके पीछे उसके लश्करी उसकी फौज चल पड़ी। इतना बड़ा मोजा अपने सामने देखा, फिर भी नहीं, एक ने भी नहीं आंखें खोली। उसका हीरा, उसकी भी तो इतनी बड़ी फौज थी, कोई एक ही सोच लेता कि ये हमें किधर लेके जा रहा है, कोई एक ही सोच लेता तो ये तो हक हमारे सामने आ गया। तो वो कहता मैं तुम्हें सीधे रास्ते पर लेकर चलाऊं, बस मुझे फॉलो करो, मेरा रास्ता सही है। हालांकि देखिए वो डुबोने के लिए ले जा रहा था। तो इल्जाम किस पे है बताएंगे आप, फिरौन पे या उसकी लश्कर पे? कोई कह रहा है कि सिर्फ फिरौन पे नहीं, उसकी कौम पे भी। क्या वो बरी जिम्मा हो सकते हैं ये कह के कि हमें क्या पता था, हम तो इसके पीछे ही चल रहे थे, हम तो मासूम? नहीं, जहां वो गया वहीं वो चले गए। और फिर देखे दुनिया में भी जैसे उसके पीछे गए और डूबे, इसी तरह आखरत में वो आगे आगे होगा और उसके पीछे जहन्नुम में जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इंसान जिनको फॉलो करता है ना, सोच समझ के करे, अंधी तकलीद कभी ना करे। और ये एक आयत में बता दिया गया पूरा उसकी रियासत का ढांचा कि वो कैसा था, उसने बेड़ा गर्क कर दिया अपनी कौम का। और ये बात फिरौन के लिए भी तबाही की है कि कयामत के दिन वो उससे, उसका तो पूछा जाएगा, उसकी कौम का भी उसके ऊपर ही वबाल होगा, इसलिए कि वो लीड कर रहा था उनको। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि तुम में से हर एक राई है, उससे उसकी रईयत के बारे में पूछा जाएगा। तो चलो वो तो फिरौन था, उससे तो पूरी कौम के बारे में पूछा जाएगा। मैं और आप भी राई हैं किसी के, हम भी किसी को लीड कर रहे होते हैं। तो छोड़े और लोगों को, कमरानों और इनको, वहां पे तो हमें देखना है कि हम किसको फॉलो करते हैं, मगर हमें भी कोई फॉलो कर रहा है ये सोचे। जी हाँ, हमारे बच्चे हमें देखते हैं ना, वो हमें फॉलो करते हैं, हमारे इर्द गिर्द वाले हमें देखते हैं ना, वो हमसे क्या चीजें सीख रहे हैं, क्या हमसे ले रहे हैं, कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता, इवन हमें बच्चों का नहीं पता चलता। बहुत सी खवातीन को मैंने सुना है, वो कहती हैं कि हाँ हमारी अम्मी फौत हो गई, पता है वो ऐसे किया करती थी, ऐसे किया करती थी। अब उनकी जिंदगी में उनको ये नहीं बात समझ आई थी, जब वो वालदा फौत हो गई तो अब उनको याद आता है कि मेरी वालदा इस तरह कुरान पढ़ा करती थी, वो ऐसे कहा करती थी, उस वक्त नहीं थी समझ। और उन वालदा को भी नहीं पता होगा कि मेरी बच्ची इतना मेरे नोट कर रही है कि मेरे मरने के बाद भी ये मेरी इस बात को लेकर बैठेगी, सोचा था कोई उसने? तो ये चीज को हमें समझना चाहिए, हम भी राई हैं, हम भी किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल हैं, हम भी किसी के इंचार्ज हैं। और जो जिसका इंचार्ज है, चाहे वो घर में है उसके बच्चे हैं, चाहे वो ऑफिस में है उसके नीचे उसके सबॉर्डिनेट्स हैं, चाहे वो किसी दोस्तों की मजलिस में वो सबसे ऊपर इंचार्ज ही बन के बैठ जाती है और सारी दोस्तें उसको ही देखती हैं और उसको ही फॉलो करती हैं और उससे इंप्रेस रहती हैं, चाहे अपने रिश्तेदारों में कोई एक होता है ना जिसकी बहुत से होती है और वो बस उसकी मानी जाती है, चाहे आप वो हैं, इनमें से वो एक होंगे ना, या तो आप फॉलोअर होंगे या आपको फॉलो किया जाता होगा, कुछ तो आप होंगे ना। तो दोनों पोजीशंस भी देख ले, एक में पूछ है या आपने लोगों को अपने पीछे जो चलाया, चाहे अपने बच्चों को चाहे किसी को भी, किस तरफ लेकर जा रही थी उनको? ये तो नहीं हुआ खुद भी डूबने चल पड़े और बच्चों को भी डुबो दिया। असल बाज लोग अपने बच्चों के दिलों के अंदर क्या डालते हैं? पैसे की पूजा डालते हैं। वो खुद भी पैसों को पूजते हैं, बच्चों के जहनों में भी वो डालते हैं। बाज खुद दीन से दूर होते, बच्चों के सामने भी दीन को हकीर करके बताते हैं, अल्लाह रसूल की बातों का मजाक उड़ाते हैं। बच्चों के सामने तो क्या दे रहे हैं उनको? ना खुद अल्लाह रसूल की मोहब्बत से आशना, ना बच्चों में डाली। तो हर बंदा सोचे, मैं अपने पीछे चलने वालों को क्या दे रही हूं और मैं खुद किसके पीछे चल रही हूं? मेरे रोल मॉडल कौन है? मेरे लीडर कौन है? और फिरौन कयामत के दिन जवाबदेह होगा इनके लिए। इससे सब लीडर्स को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैं जवाबदेह होंगी इनके लिए भी। ये लीडरी करना तो बड़ा अच्छा लगता है ना, बड़ा इंसान अपनी समझता है कि मेरा बड़ा, जिसको कहते हैं टैगर है, मैं बड़ी कोई चीज बन गया हूं। वो उसको अपने आप के अंदर ना बड़ी प्राइड महसूस होती है, बहुत बड़ी चीज महसूस होती है, चाहे वो कोई इंचार्ज है किसी ग्रुप का, चाहे वो किसी जगह ओहदा रखता है, कुछ भी है ना, तो बड़ा अच्छा सा लगता है कि मैं कोई चीज हूं। लेकिन ये जिम्मेदारी लाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सब की जिम्मेदारी अब इस बंदे के कंधों पे आ गई। इसीलिए तो सहाबा घबराते थे उदों से, इसीलिए तो वो कहते थे मुझे ना ये दो, इसीलिए तो हजरत उमर घुलते थे कौम के, अपनी अपने लोगों के गम में, ये फरमाते थे दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो उमर से इसके बारे में सवाल होगा। इसलिए रोते थे कि हाय मुझसे सवाल हो गया तो मैं क्या जवाब दूं। इसलिए लोगों से माफी मांगते थे, वो डरते थे कहीं कोई कमी ना रह जाए। वो ओहदों को बोझ समझते थे, क्योंकि अपना हिसाब देना ही मुश्किल है, कहां इंसान औरों का भी हिसाब देगा। तो इवन इमाम मेहदी भी जब आएंगे ना तो खुद नहीं आगे कहेंगे मैं इमाम मेहदी हूं मेरे पीछे चलना शुरू कर दो, लोगों आओ मेरे हाथ में बैत करो। लोग खुद उनको पकड़ेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि आप हमारे इमाम बने। वो तो आम आके तवाफ कर रहे होंगे, उससे पहले ना उनको पता होगा कि लोगों ने मेरे हाथ पे बैत करनी है या लोगों ने मुझे अपना इमाम बना लेना। तो जो भी जेन्युइन लोग होते हैं ना, वो इस तरह मरते नहीं फिरते कि हाय हम तो कौम के गम में घुल घुल के ना बस हम मर ही रहे हैं, हम मर जाएंगे इनके गम में। जिनको आखरत के हिसाब का पता होता है ना, वो घबराते हैं ऐसी चीजों से। हम भाग भाग के लेते हैं क्योंकि हमें बस ये अच्छा लगता है ना, एक हुब्बे जा भी एक बड़ी नशा होता है इसका। तो उस दिन फिरौन अशद्दुल अजाब में होगा, इसलिए कि उसने इतने सारे लोगों को गुमराह किया। वमा हदा, उसने उनको हिदायत नहीं दी। इसका मतलब है लीडर का काम होता है, जो ऊपर होता है उसका काम होता है। अब आपको कोई ये नहीं कहेगा आपने अपने बच्चों को हिदायत नहीं दी तो मेरा तो नहीं काम था ना हिदायत देना, मैं क्या करती? नहीं, आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। जब आप किसी के भी ऊपर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको सीधे रास्ते पे लगाएं, उनको उल्टा ना होने दे। दोस्तों के सर्कल में आप बैठते हैं और आपकी सुनी जाती है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको सही बात कहें, ना उनको उल्टा चलने दे। जाहिर है अब आप सोच रहे होंगे हम तो कहते हैं, लेकिन भाई अगर आप कहते हैं वो सही बात है, जबरदस्ती आपको नहीं करने को कहा गया कि आप डंडा लेके खड़े हो जाएं, लेकिन किसी को सही लीड करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और लीड बाय एग्जाम्पल भी हमारी जिम्मेदारी, कि हमारा उठना बैठना, हमारी सोच विचार, हमारी बातें ऐसी होनी चाहिए कि वाकई दूसरों को सीधे रास्ते की तरफ लाएं। हम लीड बाय एग्जाम्पल करें, ये नहीं कि खुद कुछ कर रहे हैं और लोगों को कुछ और दर्स दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब फिरौन के ऊपर देखिए हुज्जत तमाम हो गई हुई थी ना, इसलिए डूब गया। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की खुली फतह भी देख ली थी जादूगरों के मुकाबले में, और अब इतना बड़ा अपने सामने ये मौजजा समुद्र के फटने का देख लिया, जो आज तक ना कभी हुआ ना कभी होगा। इतनी बड़ी बात देख ली, मगर जब तकब्बुर इंसान के अंदर इतना आ जाता है ना, तो फिर वो कहता है कि मैंने तो मानना ही नहीं। मरते वक्त भी जब सामने गैब का पर्दा इसके उठ गया, अब इसको पता चल गया कि अब तो मैं मरने ही लगा हूं, तब बोला कि अब मैं ईमान लाता हूं मूसा के रब पे। उस लम्हे से 2 मिनट पहले तक वो अपनी उसी हालत पे बिगड़ा हुआ बैठा था। 2 मिनट के बाद जब वो बिल्कुल गर्क होने लगा और मौत का यकीन हो गया, तब बोला, तब जाके सरेंडर किया, तब मिन्नतें करने लगा, मैं मान गया, मैं मान गया, मैं ही मान ले आया। इसलिए तो हज़रत अली फरमाते हैं ना, लोग सोए में जब मौत आएगी ना तो जागेंगे, यानी अभी तो सारी गहरी नींद सोए में। अक्सर आंख खुलती ही नहीं, आंख खुलती तब है जब बड़ी देर हो चुकी होती है, जब ये रूह जिस्म से निकलने लगती है ना, फिर सारी अकड़े, सारी गफलतें, सारी जो ये मसरूफियात, सारी शेखियां, ये सब उड़ जाती हैं, भक से उड़ जाती, ये सारे बहाने, सब एक्सक्यूजेस, ये सब खत्म हो जाते हैं। जो भूला हुआ सबक था ना, बड़ी अच्छी तरह याद आता है, फिर बड़ी अच्छी तरह समझ भी सारी आ जाती है। अभी तो समझ ही नहीं ना आती, करें कैसे, क्या करें, अमल करना बड़ा मुश्किल है, तब बड़ा आसान लगने लगता है, तब तो कसमें खाते हैं, आए अल्लाह एक दफा हमें जाने दे, हम बहुत अच्छा अमल करेंगे, अब आसान हो गया। फर्क क्या हुआ? असल में पहले ये दुनिया नजर नहीं आ रही थी जो गायब की थी, अब वो जब नजर आने लगी ना, पर्दा उठा, तो तब सब चीजें आसान भी लगने लगी हैं, सब मसरूफियात भी बेकार लगने लगी, सब शौक भी बेफजूल लगने लगे, सब अकड़े भी खत्म हो गई, गफलत भी दूर हो गई, जाग भी पड़े, तब सब नजर भी आने शुरू हो गया। इससे आने कितने हो गए अब हैं? यार बात तो फिर वही है ना, कि उसको भी अल्लाह ताला ने फरमाया था अल आन, अब ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे साथ ऐसा ना हो कि हम उस वक्त कह रहे हैं अल्लाह अब एक दफा वापस जाने दे, तो फिर आगे से कहा गया अल आन, अब तुम्हें होश आया। उस वक्त तो फिरौन को भी होश आ गया था, और अगर हम भी इसी तरह के काम करें कि हमें भी तब जाके होश आना है, तो फायदा क्या फिर? फिरौन जैसे को भी उस वक्त होश आ गया था, तो और कौन रह जाता है फिर? सबको ही होश आ जाना है उस वक्त। बात तो तब है कि इस वक्त होश आए, इस जिंदगी में होश आए, इस जिंदगी में आंखें खुल जाएं, कम ही होता है कि खुलती हैं, बहुत कम होता है। या बनी इसराइल, है बनी इसराइल, कद अंजैनाकुम मिन अदुविकुम, कद अंजैनाकुम, तहकीक हमने निजात दी तुमको तुम्हारे दुश्मन से। अब अल्लाह ताला ने उनको जब पार लगा दिया, तो उनको ये यकीन दिलाया तुम्हारे दुश्मन से तुम्हें निजात दे दी। आपको पता है साल हाँ साल से जब वो एक बंदे को देख रहे हैं ना कि वो खुदा बन के बैठा हुआ है इख्तदार पे, और फिर ऐसा उसका रोब और ऐसा दबदबा, उसके एक हुक्म के ऊपर कैसे जिबा कर दिया जाता था बच्चों को, और कैसे उसके जुल्म थे, तो वो इतने अरसे से देख रहे थे ना, जब वो डूब भी गया तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये वो डूब गया, वाकई ऐसा हो गया, कितना रोब था उनके दिल पे उसका। तो अल्लाह ताला ने उसकी लाश को समुंदर को हुक्म दिया, तो उसने लाश उगल के बाहर रख दी, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया कि अल्लाह ने इसको मौत दे दी है। अल्लाह ताला ने फरमाया देखो मैंने तुम्हारे दुश्मन से तुमको निजात दे दी, वादनाकुम जानिब तूर अल अयमन, और हमने वादा दिया तुमको तूर की दाएं जानिब, यानी तूर की दाएं, राइट साइड का मतलब लिटरली भी हो सकता है, वैसे भी दाएं जानिब जो होती है वो मुबारक होती है, सीधे हमें हाथ मिलाना, दाएं हाथ से हाथ मिलाते हैं, और खाना दाएं हाथ से खाना चाहिए, लिखना दाएं हाथ से चाहिए, तो ये बरकत के लिए, मुबारक चीज के लिए आता है दाया दाई जानिब। तो अल्लाह ताला फरमाता है हमने निजात दी तुमको, देखिए नजैनाकुम भी आता है, अनजैनाकुम भी आता है, नजैना में क्या आहिस्ता आहिस्ता निजात दी, स्लोली स्टेप बाय स्टेप करके, जब उसके मजालिम थे एक के बाद एक से निजात देते हुए यहां तक पहुंचा दिया, और अनजैना एक ही दफा में, जब समंदर है तो वो एक ही दफा फटा और दूसरी तरफ उतर गए, ठीक है। तो हमने तुम्हें तूर की दाएं जानिब से वादा दिया, मुकर्रर वक्त हमने तुम्हारे लिए किया, यानी अल्लाह ताला ने वादा दिया था कि हम तुम्हें शरीयत देंगे, तूर पे मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया था ना शरीयत देने के लिए, किताब देने के लिए, जिंदगी का लाइहा अमल देने के लिए, कि जिंदगी कैसे गुजारनी है वो बताने के लिए, मूसा अलैहि सलाम को बुलाया था, क्योंकि अब एक नॉर्मल लाइफ शुरू होगी ना, पहले तो एक गुलामी की जिंदगी थी, वो तो अपनी तरफ से थोड़ी कुछ कर सकते थे, तो अब एक नॉर्मल लाइफ में जब आएंगे तो कैसे जिंदगी गुजारनी है वो फिर अब बताया जाएगा इनको। उसके लिए अल्लाह ताला ने इनको शरीयत देनी थी। वَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى, और तुम्हारे पर नाजिल किया मन और सलवा। नज़लना क्या होता है? एक अनजलना, जैसे एक अनजईना एक नज़ईना, और इसी तरह एक अनजलना एक नज़लना। अब तो आपको समझ आनी चाहिए ना इसका मतलब क्या है। अनजलना एक दफा उतारना, नज़लना आहिस्ता आहिस्ता करके उतारना, कंटिन्यूसली करके मुसलसल उतारना। तो इनको मुसलसल दिया गया मन और सलवा, एक दिन नहीं सिर्फ दिया गया था। और मन और सलवा क्या था? मन डिजर्ट था, स्वीट डिश टाइप कोई चीज, और सलवा जो था वो रोस्टेड क्वेल, वो भी आज की भी डेलिकसी है, ये ऐसा परिंदा है कि मतलब आज भी बहुत समझी जाती है चीज इसको। और तो सिर्फ खाना ही नहीं दिया, डिजर्ट भी दिया। और अल्लाह ताला का ये एहसानात है, ये देखो तुम्हें निजात भी दी, और इनको कुछ लड़ना नहीं पड़ा, इनको कोई मुकाबला नहीं करना पड़ा, इनको कोई उसके साथ कोई जंग नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला ने उसको खुद डबो दिया, और कैसे मिनटों में, अभी वो वहां खड़ा हुआ था इतना बड़ा लश्कर लेकर के, उसकी हैबत इतनी थी कि वो कहते हाय मूसा हम तो पकड़े गए, हाय मूसा अब हमारा क्या होगा। और कुछ ही देर में ये हाल था कि उसकी लाश साहिल पे पड़ी भी थी, बेबस मौत के घाट उतर गया। तो इनको तो जरा भी नहीं कुछ करना पड़ा। अल्लाह की जब मदद आती है ना तो ऐसे आती है। और शरीयत का आना, शरीयत का मिलना, ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और ये उनको तौरात की शक्ल में अल्लाह ताला ने अता फरमाई, और फिर 40 साल तक मनो सलवा का इंतजाम रहा। आप देखे ना ये मैदाने ती में, जैसे कि आपको याद होगा, आपको पहले बताया हुआ है कि किस तरह से इनको मूसा अलैहि सलाम जब लेकर गए थे कि आप फलस्तीन में दाखिल हों, तो इन्होंने कहा मूसा हम तो नहीं जा सकते। तो उन्होंने जब इनको बहुत इसरार किया तो कहने लगे मूसा जा तू और तेरा रब जाके लड़, हमसे तो नहीं लड़ा जाता, हम तो यहाँ पे बैठे हैं। अल्लाह ताला ने इनको सजा दी कि फिर मैदाने ती में 40 साल तक ये घूमते ही रहे, सुबह को जहां से चलते थे शाम को देखते थे वहीं पे आ गए, इनको रास्ता ही नहीं मिला, अल्लाह ने ऐसा इनको कर दिया। लेकिन मनो सलवा दिए रखा, इनको भूखा नहीं मारा, वहां बादलों का साया किए रखा, अब ना घर ना बार ना खाना ना पीना, वहां पे क्या था। सुभान अल्लाह, कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम। फिर अल्लाह ताला का हुक्म आया कि तुम ये मनो सलवा तुम्हारे पर अल्लाह नाजिल कर रहा है ना, खाओ पियो, जो तुम्हें अल्लाह ने रिस्क दिया पाकीजा रिस्क दिया है, खाओ। वला ततगौफी, तो इसमें सरकशी ना करना। सरकशी कैसे होती है रिस्क में? रिस्क में सरकशी का मतलब क्या होता है? उसको किसी तरह से भी जाया करना, उसकी नाशुकरी करना, उसके अंदर कीड़े निकालना, उसको नापसंद करना, मतलब अल्लाह ताला पाक साफ रिस्क दे और फिर उसके ऊपर नाक मुंह चढ़ाना। आपको पता है नबी अलैहि सलातो वसलाम कभी भी उन्होंने खाने के बारे में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि कभी आपने खाने में कोई नुक्स निकाला ही नहीं, कभी भी नहीं निकाला। अगर दिल होता था तो खा लेते थे, नहीं पसंद आता था ना तो छोड़ देते थे, लेकिन ये नहीं कहते थे कि ये क्या। यहाँ पे तो हाल ये है कि बाज मर्द इतने ज्यादा इस चीज के बारे में सेंसिटिव होते हैं, या इतनी नाशुक्री है और क्या, कि वो कहते हैं कि मतलब घर में अच्छे भले फसाद खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि बाज जगह पे मैंने देखा तलाक तक नौबत आ गई कि आज ये इसने ऐसा बनाया और ये किया। तो खाने के अंदर इतना नुक्स निकाला, हमसे बहुत आला, हम क्या चीज है, उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं, हमसे बहुत आला जो इंसान थे इस दुनिया की बेस्ट हस्ती, उन्होंने कभी खाने में नुक्स नहीं निकाला था। और हमारी क्या औकात है कि हम खाने में बैठ के कहते हैं लो ये फिर पका लिया, लो ये अब ये कर दिए, अब उन्होंने भी तो यही कहा था, लो अब फिर हम यही खाएं, अब फिर मनो सलवा, अब फिर मनो सलवा, हमसे नहीं कोई खाया जाता, अब हमें तो दाल ककड़ी और ये वो चीजें चाहिए। हम पढ़ चुके हैं याबा फूमी हावा आदा सी हावा बसली हा, सूरह बकरा में सारा आया। उन्होंने डिमांड और ही रख दी, जमीन की चीजें हमें चाहिए, आसमान से उतर उतरा हुआ रिस्क जो मनो सलवा की सूरत में था वो नहीं हमसे खाया जाता। और उनको कहा था स्टोर नहीं करना, हर दिन का हर दिन बस खाना है, अगले दिन अल्लाह तुम्हें देगा, वो फिर स्टोर करना शुरू होगा। ये तो वो यार नहीं है। असल में पता क्या आया इसके पीछे, असल में मैं आपको मसला इसके पीछे का बताती हूँ कि इंसान को जब जो कुछ भी मिल रहा होता है ना, वो बड़ी जल्दी उसका यूज टू हो जाता है, आदी हो जाता है। कि मुझे रोजाना लेविश खाने अगर मिलते हैं ना, तो मैं इसकी इतनी आदी हो जाती हूँ कि अब मैं इसको अपना हक समझती हूँ कि मैं मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए, और या इससे भी ज्यादा कोई अच्छा हो, मैं इससे कम मैं तो कुछ सोच ही नहीं सकती, इससे कभी कम भी हो सकता है। अब ये दिमाग में ये बात होना ना कि ये मैं इसकी हकदार हूं, मुझे मैं डिजर्व करती हूँ, इसी वजह से फिर हम कीड़े निकालते हैं, क्योंकि जरा सा भी फिर उससे इधर से उधर हो गया तो कैसे हो, कैसे गया, ये इसमें नमक तेज कैसे हुआ, ये दोबारा क्यों मिला, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं कि आपको रोजाना बेस्ट खाना मिले। क्या आप ये भी डिजर्व करते हैं कि आपको रोजाना खाना मिलना चाहिए? क्यों, क्या स्पेशलिटी है आपके अंदर? क्या मेरे और आपके अंदर ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए हैं कोई, हम बहुत बड़े कोई नेक और पारसा लोग हैं, हमने तो कभी कोई गुनाह किया ही नहीं, हम तो जमीन के ऊपर चलते फिरते फरिश्ते हैं, हमें तो हम वी डिजर्व इट, कि हमें तो बेस्ट होना चाहिए, क्या चीज है हम? इसीलिए अगर हम मतलब बी लेवल पे है ना, बी पे है मतलब, तो हम सी पे अगर हमें कभी आ जाए, हमें तो परेशान हो जाते हैं कि ओ हम कैसे एक स्टेप नीचे कैसे हो गया ये। हम ये नहीं सोचते कि बहुत सारे लोग लाखों डी ई एफ जी एच इसके ऊपर, मैं आपको वैसे एक मिसाल के उस पे बस समझाने के लिए बता रही, कोई जी पे भी है, एक्स वाई जी पे भी है कोई लोग बैठे, जो क्या खा रहे हैं इस वक्त, क्या पी रहे हैं इस वक्त, आप सोच ही नहीं सकते। इस वक्त वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, कलमा गो हैं, जिनके बारे में यूएन ने कहा है कि इस वक्त सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यमन में है, जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, क्या वो भी मुसलमान ही है? हम क्या ऐसी बहुत बड़ी शान वाली चीज है कि आज खाने के अंदर ये क्यों नहीं है, और हम क्या यही खाएं, और ये फीका क्यों है, और इसमें मसाला क्यों है, और इसके जाए ये क्यों ऐसा है, और इसका रंग अच्छा नहीं है, आज इसमें तेल कम क्यों है, आज ज्यादा क्यों है, आज ये ऐसे क्यों है? तो ये जो दिमाग में खन्नास है ना, इसको निकाल दे कि मैं डिजर्व करती हूं। अगर दिमाग में ये होगा ना, आजी होगी कि अल्लाह मैं तो कुछ भी डिजर्व नहीं करती, अल्लाह तूने ये भी दे दिया ना, तेरा करम है मालिक, तूने खिला दिया ना, तेरा करम है, तूने मेरी भूख मिटाने का इंतजाम कर दिया ना, तेरा शुक्र है मालिक, मैं तो इस काबिल भी नहीं थी। ये जब जज्बा आएगा तो आप कभी कीड़े निकाल नहीं सकते। ये कीड़े निकालने का, ये खानों के अंदर बातें बनाने, नेगेटिव कमेंट्स देना तभी आता है जब इंसान सोचता है आई डिजर्व इट, मैं इस लायक हूं कि मुझे मिलना चाहिए और इससे भी ज्यादा अच्छा मिलना चाहिए था, ये क्या मिल गया मुझे। तो मैंने जैसे आपको बताया अगर आप बी पे हैं, तो जो सी डी ई एफ उसका भी कभी सोचा है कि वो क्या खाता है, और उसका भी कभी सोचा है कि जिनको कुछ मिल ही नहीं रहा खाने को, उनका सोचा है जो हर, कभी आप गूगल करके देखना, हर मिनट नहीं सेकंड्स में कितने लोग भूख से इस दुनिया में मर रहे हैं, भूख से। लेकिन हम समझते हैं हम डिजर्व करते हैं, रोज सब्जी बन जाती है तो हमारा मुंह बन जाता है, और गोश्त भी एक किस्म का थोड़ी हम खा सकते हैं, हर दिन डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो हम सब लाइन पे आ जाएं, जरा सीधे हो जाएं हम, और शुक्र अदा करें इस पे कि हमें मिल रहा है, शुक्र अदा करें कि इस बात पे नहीं कि बस बहुत अच्छा ही मिले तो हमने शुक्र अदा करना, इस बात पे शुक्र अदा करें कि भूख मिट रही है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं कि भूख क्या बड़ा अजाब है, भूख भी एक अजाब होती है, अल्लाह ना कभी दिखाए मगर ये एक अजाब है, ये क्या चीज होती है, ये कुछ अल्लाह ताला हमें माफ करे लेकिन हमें पता ही नहीं, और पता होता ना तो रोते जिस वक्त हमारे सामने खाना आता। और इस बात पे शुक्र करते हैं अल्लाह, तूने इस भूख को मिटाने का सामान दे दिया। ये नहीं कि चस्कों का सामान मुझे चाहिए। अल्लाह अकबर। तो वला तत्गौ फी, इसमें देखना सरकशी ना करना, तुम खाओ पियो, इतना उमदा तुम्हें रिस्क दिया गया है, ऑर्गेनिक फूड है, खालिस फूड है, तुम सरकशी ना करना। हम तो रोज ही सरकशी करते हैं, अगर सरकशी करोगे तो क्या होगा? फयहिल अलैकुम गज़बी, तो उतरेगा तुम्हारे ऊपर गजब मेरा। अल्लाह का गुस्सा आता है जब उसकी नियमतों की नाशुकरी की जाती है। वो नियमतें दे और आगे से इंसानों के मूड ही सही नहीं होते, उनका तो कभी भी मूड सही नहीं है। जब अच्छा खाना मिल जाता तो उसके बाद भी खा के डकार लेके उठ के जाके तो बैठ जाते पैर पे पैर रख के, आप कुछ एंटरटेनमेंट की जाए। उसके बाद भी शुक्र गुजारी नहीं है, उसके बाद भी सज्दे में नहीं गिरते। तो अगर तुमने सरकशी की तो देखो मेरा गजब तुम पर आएगा। व मैं यहलिल अलैहि गदबी, और जो जिसके ऊपर नाजिल हुआ मेरा गजब, फकद हवा, तो वो तो हलाक हो गया, उसका तो कुछ नहीं बचेगा। जिसके ऊपर अल्लाह का गजब आ गया उसका क्या बच सकता, खत्म हो गया वो, तबाह हो गया। ऊपर से नीचे गिरने के लिए हवा आता है, बस ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरा। अब आप बता दें किस चीज के बारे में कहा जा रहा है। ये काम तो हम रोज ही करते हैं, तोगयानी, जाया करना, नाशुक्री करना, नापसंद करना, उसके ऊपर नेगेटिव बातें करना। वा इन्नी लगफ्फारुन लिमन ताबा व आमन व आमिला सालिहन। एक बात मुझे याद आई, बाज लोग कहते हैं और कमाते किस लिए, खाने के लिए तो कमाते हैं, इन्हें सोचें कि सुबहान अल्लाह अल्लाह अकबर, इनको अभी तक यही नहीं पता कि जिंदगी का मकसद को तो कुछ और था। इन्होंने यही समझा कि दुनिया में आए इसीलिए कि हमने खाना पीना है, इसलिए तो फिर वो उस तरह का नहीं मिलता। तो वो कहते हैं फिर हम कमाते किस लिए, नहीं उनकी जिंदगी का मतमा नजर यही है, खाना। अल्लाह अकबर, बहुत ही थोड़ी कीमत पे उन्होंने इस जिंदगी का सौदा किया। जिंदगी तो अल्लाह ने किसी बड़े आला मकसद के लिए दी थी, इन्होंने समझ लिया खाने के लिए मिली है। ओह, तो फिर वो तो फिर कुछ भी ना देख के गए, जो भूखों रहते थे कई कई दिन, उनके घर में खजूर और पानी के सिवा कुछ नहीं होता था, कभी दो वक्त का खाना एक दिन में नहीं खाया था जिन्होंने। पहले सोच कुछ सही करेंगे तो फिर चीजें स्ट्रेट होंगी ना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, और बेशक मैं तो अल गफ्फार हूं। अल गफ्फार, एक होता है गफूर, गफारा कहते हैं ढांपने को वैसे, ठीक है, तो एक है गफूर, एक है गाफिर और एक है गफ्फार। मैंने आपको बताया था ना कि जब शिद्दत आ जाती है वर्ड में तो उसकी उसके जो उसका मीनिंग जो होता है ना, वो भी उसके अंदर भी शिद्दत आ जाती है, कि बहुत ज्यादा माफ करने वाला, बहुत ज्यादा। गफूर है जो बार बार माफ करते, गफार है जो एक्सेसिवली, जिसकी कोई लिमिट नहीं है माफ करने की, गाफिर जो फौरी जो माफ कर देता है। तो थोड़ा थोड़ा फर्क है ना, तो बहुत ज्यादा माफ करने वाला, लेकिन किसके लिए? लिमन ताबा, जो तौबा करे, वह आमना, और जो ईमान ले आए, वह आमिला सालिहन, ये तीन शर्तें हैं उसके लिए है वो गफ्फार, ठीक है। वो शर्तें क्या हैं? सबसे पहले लिमन ताबा। अब तौबा का बना को कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो हम हमेशा से चूंकि सुनते रहते हैं तो बस उसको बोलते तो रहते हैं, हमें उनका मीनिंग नहीं पता होता। तौबा 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 करनी चाहिए, तौबा कर रहे हैं तो सब तौबा करें, तो व्हाट व्हाट इज तौबा? डू यू इवन नो व्हाट तौबा इज? क्या चीज होती है तौबा भाई, इसका मतलब क्या होता है? ताबा यतूबु का, उसी से तौबा है, पलट आना, मुड़ जाना, जिसको हम कहते हैं यू टर्न ले लेना, ठीक है। तो यू टर्न लेना, इसको तौबा कहते हैं। जब आप तौबा करने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने वापस अल्लाह की तरफ पलट आना है। यानी जैसे आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आपको एहसास हो गया, ओहो ये तो मैं कोई गलत रास्ते पे आ गई। तो आप क्या करते हैं? उसी पे गाड़ी चलाते रहते हैं। कोई बात ही नहीं, आप गलत आ ही गई हैं तो चलो मैं आगे भी चलती हूँ, ऐसे नहीं करते। अब वो नहीं देखते हैं मैं यू टर्न ले लूं। ओहो, आपको पता है कि मैं जितनी आगे जाती जाऊंगी उतना ही ज्यादा दूर होती जाऊंगी सही रास्ते से, मुझे वापस पलटना है। अब वो एकदम परेशानी हो जाती है, जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता है। फिर आप यू टर्न लेते हैं, सीधे रास्ते की तरफ वापस जाने के लिए तलाश में लग जाते हैं। तो तौबा यही है कि इंसान को एहसास हो गया कि ओ मैंने ये क्या गलत कर दिया, ये तो मैं बहुत गलत कर रही थी। और वो बगैर किसी डिले के फौरी तौर पे उस काम को छोड़ देता है, जैसे आपने उस रास्ते को छोड़ दिया, उस पे ही नहीं चलते चले गए, आपने उस काम को छोड़ दिया और अल्लाह की फरमाबरदारी की तरफ को आ गए। हमने समझा वह तौबा का मतलब तस्बीह कर लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह अंत सुभानक। आ जाओ लोगों, मैं आप फोन कर लूं अपने 20-25 औरतों को इकट्ठा कर लूं, आप सारे आके आयत करीमा की तस्बीह कर ले मेरे घर में, क्योंकि मेरा ये मसला है। तौबा को आपने क्या समझा, वह तमाशा नहीं है ये। अच्छा इस एग्जाम्पल से समझे, अगर आपको ये नहीं बात समझ आए, आपकी वालदा आपने कोई काम किया वो जिससे नाराज हो गई, अब आप क्या करते हैं? आप अपनी वालदा के पास जाते हैं और आप, वो आपसे नाराज हैं, आप उनको कहते हैं अम्मी मेरे सॉरी सॉरी, अब मैं कभी नहीं करूंगी, मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगी। फिर आप उनको प्यार भी करती हैं, गले भी लगाती हैं, फिर उनकी टांगे भी दबाना शुरू कर देती हैं कि ये मेरे से खुश हो जाए। यही है ये सारा कुछ, ताबा मनावा मेरा सौलिया, पता है इसी इसी को मैं आपको अभी इस तरह से बताती हूँ। अब आप क्या करेंगी? अब आपकी अम्मी नाराज हुई थी कि आपने वहां नहीं जाना और आप वहां चली गई थी, तो अब आप क्या कहेंगे? अच्छा अम्मी खुदाफिज, मैं फिर वही जा रही हूँ, ऐसे करती हैं? नहीं, अब अभी आपने अपनी अम्मी से कहा मैं सॉरी मैं कभी नहीं करूंगी, अब ये मैं कभी वहां नहीं जाऊंगी। यही तौबा का तो मतलब होता है ना, कि सॉरी अल्लाह मैंने ये कर दिया, मैं अब कभी नहीं करूंगी, मेरी तौबा। तौबा मतलब मैं अब कभी नहीं करूंगी, मैं इस रास्ते को छोड़ दूंगी। तो ये कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ मीनिंगलेस वर्ड नहीं है जिसकी हम तकरार करते रहे, तौबा 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 तौबा। ये नाफरमानी वाले काम को छोड़ के फरमा बरदारी वाले काम की तरफ आना, इसको तौबा कहते हैं। पहले तो ये एहसास हो जाना, ओहो मैं तो रॉन्ग कर रही थी, ये नहीं कि मैंने रॉन्ग तो नहीं कर रही, ये रास्ता तो गलत नहीं है, लेकिन चलो अब आपने कहा है तो मैं मुड़ ही जाती हूँ। वैसे रास्ता गलत नहीं था, अगर आप ये सोचते हैं कि रास्ता ही गलत नहीं था तो किस चीज की तौबा। बाज लोगों को गुनाह इतने फेवरेट होते हैं, इतने पसंद होते हैं कि वो कहते हैं अच्छा चलो अब इनको छोड़ना पड़ेगा ही, लेकिन वैसे दिल तो नहीं चाहता था मेरा, एहसास नहीं है कि मैं गलत कर रही हूँ, पशेमानी नहीं है, निदामत नहीं है, अल्लाह तुझे नाराज कर दिया, मैं ये मैंने क्या कर दिया, ये चीज है ही नहीं। पता नहीं किस चीज की तौबा तौबा हो रही है। फिर तौबा कर ली, वह आमना और ईमान ले आया, फिर वापस अल्लाह की तरफ पलट आया, अल्लाह को खुश करने के लिए साले अमल शुरू कर दी। ईमान में भी फर्क पड़ता है ना, इंसान जब गुनाह करता है ना उसका ईमान भी डाउन हो जाता है। आप देखेंगे आप नेकियां करते हैं आपका ईमान अप होता है, बूस्ट मिलती है उसको, आप गुनाह करते हैं ईमान डाउन होने लगता है, वीक होने लगता है, जो जितना गुनाहों में पड़ता है उसका ईमान उतना ही वीक होता जाता है। तो वो अल्लाह ताला को खुश करने, अब आपने अपनी अम्मी को, अब आपने उनसे कह तो दिया था सॉरी, लेकिन अब आप उनकी टांगे भी दबा रही, उनका माथा भी चूम रही, उनको प्यार भी कर रही है, बार बार उनको खुश करने के लिए कभी कुछ कर रही है, मैं आपके लिए ये लेकर आती, ये क्या है? ये आमिर सवाल है, यानी अब आप नेक अमल कर रहे हैं, नेकियां कर करके अल्लाह को दिखा रहे हैं, अल्लाह तू मेरे से खुश हो जा, तू मेरे से राजी हो जा, तू मेरे से राजी हो जा, भाग भाग के दिखा रहे हैं अपने रब को, अल्लाह मैंने बस वो रास्ता छोड़ दिया। कभी हमने भी सोचा है कि ये इसके लिए अल्लाह गफ्फार। फिर होता है आपकी अम्मी आपको कहती ना अच्छा भाई बेटा मैं तुझे माफ कर दिया, ये बात है। तो हम पता नहीं किस वर्ल्ड में हैं, हमने क्या समझा हुआ है तौबा को, और हमने क्या समझा हुआ है कि ये किस तरह इसका प्रोसेस होता है, या फिर पता नहीं ऐसे तस्बीह कर लेने से ही हो जाती है तौबा। अब पता ही नहीं है कि मैंने कोई गुनाह भी कर रही हूँ, नहीं मैं इतने भी हम गुनाहगार नहीं है, अब इतने भी हम बुरे नहीं, साथ साथ ये भी कहते जाना, साथ तौबा इस्तगफार भी चल रही है। फिर तौबा इस्तगफार किस बात की कर रहे हैं, आप तो इतने बुरे हैं ही नहीं, इतने भी हम नहीं, लोग तो आजकल इतना कुछ करते हैं, हमने क्या ऐसा कर लिया? जब दिमाग में हमेशा अपनी नेकियों का ही जोम रहे, अपनी नेकियां ही सर पे सवार है, मैं तो ये भी करती हूँ ये भी करती हूँ, मैंने तो क्लासें भी इतनी ली हुई है, मैं तो तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, मैं तो हर वक्त दिमाग पे ये सब आ रहा था। गुनाहों का तो कभी याद भी नहीं आता कि मैं कोई गुनाह करती भी हूँ, कोई लिस्ट ही नहीं, मुझे याद नहीं, मैं बस ऐसी तौबा कर लेती हूँ। लेकिन वैसे तो ये कौन सी तौबा है? तो अल्लाह ताला उनके लिए गफ्फार है, समझ आई? जब जो ये काम कर ले और जो घर बैठे बस यही कहते रहे अल्लाह गफूर रहीम अल्लाह गफूर रहीम, माफ कर देगा, तो उसने तो ये स्टेप किए ही नहीं। हम उसके बाद साले अमल की फिक्र करते हैं? महतदा, फिर वो राह पाई, फिर हिदायत पा ली, फिर फरमाया कि यहां तक ही नहीं, फिर हिदायत भी पा ली, फिर इसका ये सिलसिला आगे तक रहा, ये हिदायत पाने वाला बन गया। यानी ज़िहाब कहते हैं कि फिर वो हिदायत पे कायम रहा, यानी एक दफा उसने करके फिर उसको तो ये मुतमईन होके नहीं बैठ गया अब सारी जिंदगी के लिए बस मुझे हिदायत मिल गई। उसके बाद वो इस रास्ते पे मरते दम तक चलने के लिए सीधे रास्ते पे कोशिश करता रहा। और याद रखें, जब इंसान कोशिश करता है ना, तो अल्लाह ताला भी फिर कभी ये डर के जो शैतान जहन में डालता है ना कि आय हाय तुमने अगर ये गुनाह छोड़ भी दिया तो क्या करोगी, फिर दोबारा हो जाएगा तुमसे, फिर कर लोगे, फिर क्या होगा, उस वक्त क्या करोगी, फिर बता बताओ, फिर ये कैसे होगा, फिर वो कैसे होगा, इतनी मुश्किल कर देता है तौबा करने को, सीधे रास्ते की तरफ आने को, गुनाह को छोड़ने को इतना मुश्किल कर देता है कि इंसान को खदशात ही आते रहते हैं, बैठता सोचता ही रहता है, फिर उसके बाद सारा जज्बा ही ठंडा हो जाता है तौबा करने का। जब तौबा का सोचता है साथ पता नहीं कितने फियर्स आते हैं। याद रखें, अल्लाह ताला जब आप नेक काम शुरू कर देते हैं, तौबा कर लेते हैं, नेक काम पे आ गए, उस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं ना हिदायत के रास्ते पे, तो फिर डरे नहीं, अल्लाह ताला थाम लेता है, फिर अल्लाह थाम लेता है। जब इंसान की नियत होती है ना कि मैंने चलना ही है इस रास्ते पे, मैंने नहीं छोड़ना, तो अल्लाह ताला भी नहीं फिर उसको छोड़ता। तो कभी आके तो देखिए इतना डरे नहीं गुनाह को छोड़ने पे कि मेरा क्या बनेगा, फिर फलां क्या होगा, इस चीज का क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, 100 चीजें सोचते हैं, उससे पहले मर गए तो क्या होगा ये सोचेंगे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.